السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. जहाँ आजकल हम नेकियां करने में दौड़ लगा रहे हैं, वहाँ ये बहुत शदीद ज़रूरत है कि हम गुनाहों से बचें। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फ़रमाया, वज़रू ज़ाहिर अल-इथ्मि व बातिना, छोड़ दो खुले गुनाहों को और छुपे। गुनाह इंसान के लिए इतने शदीद नुकसानदेह हैं जिसका अंदाज़ा हम करते नहीं हैं, और गुनाह को बहुत आराम से और आसानी से कर जाते हैं। हालांकि इसके दुनिया में भी नुकसान आते हैं और आखिरत में भी, मगर जाहिर है जब हम उसके नुकसान से ही वाकिफ नहीं तो क्या परहेज करेंगे। जैसे मसलन एक बच्चे को मालूम नहीं कि ये बिजली का तार है तो वो उसको आराम से छू लेगा, लेकिन एक बड़े को पता है कि इसमें नुकसान है तो वो उसको कभी हाथ नहीं लगाएगा। इसी तरह जब इंसान को पता नहीं होता कि गुनाहों का कितना बड़ा नुकसान है तो वो आराम से गुनाह करते चले जाते हैं और एहसास भी नहीं करते कि ये गुनाह मुझे कहाँ तक पहुंचा देंगे। हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें गुनाहों से बचने की ताकीद फरमाई है, और तकवा भी इसी चीज़ का नाम है कि इंसान गुनाहों से बचे। देखें, तकवा क्या है? तकवा ये नहीं है कुछ करने का काम नहीं है, बल्कि कुछ ना करने का काम है। तकवा यानी वो बातें जिनसे अल्लाह ताला नाराज़ होता है उनको ना करना तकवा कहलाता है। इसीलिए हम इसका माना बाज़ जगह पे देखते हैं बचने का। तो बचना किस से? अल्लाह ताला की नाराज़गी के कामों से। हमारी शरीयत इस बात को पसंद करती है कि इंसान चाहे लंबी इबादतें इतनी ना करता हो मगर गुनाहों से बहुत ज़्यादा बचने वाला हो। चाहे लंबे लंबे अस्कार, नफली रोज़े या और कयामुल लैल आप नहीं भी करते, मगर अगर आप गुनाहों से बचने वाले हैं तो आप अल्लाह के वली हैं। क्योंकि अल्लाह ताला के जो औलिया होते हैं वो गुनाहों से बहुत बचते हैं। उमर बिन अब्दुल अजीज के बारे में उनकी बीवी फरमाती हैं कि उमर बहुत ज़्यादा कोई लंबी नमाजें पढ़ने वाले नहीं थे, बहुत ज़्यादा कोई लंबी लंबी इबादतें करने वाले नहीं थे, मगर सबसे ज़्यादा खौफे खुदा रखने वाले थे, यानी अल्लाह ताला का डर होना। इसीलिए हम तकवा का माना डरना भी बाज़ जगह पे देखते हैं, क्योंकि अल्लाह के डर की वजह से इंसान बुराई को छोड़ दे। अब हमारा हाल क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि हम लंबी लंबी इबादतें कर रहे हैं तो अब हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर हम कुछ बुराई के भी दो चार काम कर लें। इसीलिए हम मस्जिद जाते हैं, वहाँ पे नमाज़ें अदा करते हैं, तहज्जुदें अदा करते हैं, रोज़ा रख रहे हैं, हम तस्बीहात कर रहे हैं, हम और नेकी के काम करने में आगे बढ़ रहे हैं, सदका वगैरह करते हैं, मगर साथ साथ हम गुनाहों में भी दलेर होते हैं। हालांकि कयामत के दिन जब ये इबादतें अल्लाह ताला के हजूर पेश होंगी तो गुनाह भी साथ पेश होंगे, और गुनाहों को भी पलड़ों में तोला जाएगा जैसे नेकियों को तोला जाता है। लिहाजा हमारी यही कोशिश होनी चाहिए कि हर वक्त हम इस पे नजर रखें कि हमसे कोई गुनाह तो नहीं हो रहा। एक आदमी अगर बीमार होता है और उसको डॉक्टर दवाई दे देता है लेकिन दवा काम नहीं करती, तो डॉक्टर कहता है कि आप परहेज नहीं कर रहे। परहेज करना जरूरी है अगर बीमारी को दूर करना है। हम लोग भी नेकियां तो कर रहे हैं, दवा तो ले रहे हैं, मगर परहेज नहीं करते, जिसकी वजह से हमारी बाज़ नेकियां भी जाया हो जाती हैं। इमाम गजाली फरमाते हैं कि आलिम वो है जो गुनाहों के नुकसानात को सबसे ज्यादा जानता है। यानी कोई आलिम तभी इंसान हो सकता है कि अगर उसको पता है कि गुनाहों के क्या क्या नुकसान आते हैं, तभी वो उनसे बचेगा। लिहाजा जब हम सुबह करें तो हर सुबह दिल में ये नियत कर लें कि मैंने आज कोई गुनाह नहीं करना। शाम तक मेरी यही कोशिश रहे कि ना आंख से कोई गुनाह हो, ना जुबान से हो, ना हाथ पैर से हो, ना कानों का कोई गुनाह हो, ना शर्मगाह का कोई गुनाह हो। हर तरह के गुनाह से मुझे अपने आप को बचाना है, और अल्लाह ताला से दुआ भी करें। देखें, जो दिन आपका गुनाहों के बगैर गुजर गया, समझ लें कि ऐसे ही है कि आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो दिन गुजार लिया। और आप जब अल्लाह ताला से मदद मांग के दिन गुजारेंगे कि ए मालिक, मैं आज का दिन ऐसे गुजारना चाहती हूं कि तेरे हुक्म की, किसी हुक्म की नाफरमानी ना हो, और इसको अपनी तमन्ना बना लेंगे, तो हर दिन आपका बरकत वाला होगा और हर दिन गुनाहों से पाक होगा। ठीक है, छोटे मोटे गुनाह इंसान से हो जाते हैं क्योंकि हम इंसान ही हैं, मगर कम से कम हम इसकी नियत तो करें कि मैंने नहीं करना। गुनाह ऐसे हैं जैसे नजासत होती है, हर उज्व जब गुनाह करता है, जैसे आंख ने गलत देखा तो आंख आंख निजासत वाली हो गई, नापाक हो गई। जुबान से झूठ बोला और बुराई की बातें की, जुबान नापाक हो गई। कानों से बुरा सुना, म्यूजिक सुन रहे हैं, गिबत सुन रहे हैं, गलत बातें सुन रहे हैं, बेहयाई की बातें सुन रहे हैं, कान नापाक हो गए। इसी तरह पाँव से गलत चल के गए, पाँव नापाक हो गए। तो निजासत समझ लें कि ये गुनाह निजासत का बाइस बनते हैं, आजा की निजासत का। समझिए ऐसे कि निजासत जब कहीं होती है तो वहां पे बदबू होती है, गुनाहों की बदबू है। हदीस में आता है कि इंसान जब झूठ बोलता है उसके मुंह से बदबू निकलती है, हत्ता के फरिश्ते उसकी उससे तकलीफ महसूस करते हैं और उस बंदे से दूर हो जाते हैं। तो आप अंदाजा कीजिए, इसका मतलब है कि गुनाहों की बदबू है। तो किसी गुनाह को भी हल्का ना समझे। इसीलिए इब्ने कय्यम फरमाते हैं कि ए दोस्त, गुनाह करते हुए ये ना देख के छोटा या बड़ा है, बल्कि उस परवरदिगार की अजमत को देख जिसकी तू नाफरमानी कर रहा है। तो कभी किसी ने किसी छोटे सांप को हाथ में उठाया कि छोटा सा ही है, कोई बात नहीं? या आपने कभी कोई छोटा अंगारा हाथ में लिया कि छोटा अंगारा है ना, बड़ा तो नहीं है? हम कभी नहीं ऐसा करते। क्यों? इसलिए कि छोटा हो या बड़ा, हमें पता है कि ये नुकसानदेह है। लिहाजा गुनाह करने से जितना बचे, हमें जब गुनाह करने से बचने की बात आती है तो जहन में ये बात आ जाती है कि कोई बात नहीं, अल्लाह ताला तो गफूर रहीम है, वो तो माफ कर ही देगा। याद रखिए, शैतान का धोखा आता है। सूरह निसा में अल्लाह ताला ने फरमाया, मन यामल सू अन युज्ज़ा बिही, जो बुराई करेगा उसको उसकी सजा मिलेगी। इसका मतलब क्या है? या तो सजा दुनिया में मिलेगी या आखरत में मिलेगी। अब खुद सोच लें कि हमें दुनिया में सजा चाहिए या आखरत में चाहिए। अनलेस के कोई इंसान तौबा कर ले, तौबा कर ले तो अल्लाह ताला जिसको चाहे माफ कर दे। और तौबा में कितनी निबदामत है, कितनी शर्मिंदगी है, कितना इंसान को ये अफसोस है कि ये गुनाह मुझसे हो गया। हमारी तौबा भी बाज दफा ऐसी होती है कि उसके ऊपर भी तौबा करने की जरूरत पड़ जाती, क्योंकि तौबा इतनी गफलत से की हुई है। ऐसी तौबा है कि जो तौबा नहीं है, बस जुबान की एक जारी एक जिक्र की तरह है कि बस तौबा तौबा इस्तगफार तौबा तौबा, बस ऐसे करते गए। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको आप इस तरह से कहें जैसे कि आप पहाड़े पढ़ते हैं, जैसे कि आप किसी बच्चे को सिखा दें अस्तगफिरुल्लाह, वो कहता फिर रहा है तो उस बच्चे को शऊर नहीं है। ये ऐसी चीज नहीं जैसे तोते को रटा दी जाए तो वो कहता रहे। शऊर होना चाहिए इसके अंदर कि मैं किस चीज के ऊपर तौबा कर रही हूं। याद रखिए, दुनिया और आखरत की कोई बुराई और बीमारी ऐसी नहीं है जिसका सबब गुनाह ना हो। और ये देखें कि आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से सिर्फ एक गुनाह की वजह से, अल्लाह ताला की एक नाफरमानी की वजह से निकाले गए, और इबलीस भी जो जलील हुआ और लानत का मुस्तहिक हुआ, एक नाफरमानी की थी उसने। इसी तरह पिछली कौमों को देख लें, उनके ऊपर जो अजाब आए कोई तूफानों के जरिए हलाक कर दिया गया, किसी के ऊपर तेज आंधी चली, किसी के ऊपर जलजले आए, किसी के ऊपर चीख की अजाब आया, तो वो सब किस लिए था? कोई ना कोई उनका गुनाह था,
इमाम अहमद ने ये वाकया नकल किया है।
ताकि जब जजीरा कब्रस मुसलमानों ने फतह किया और वहां के लोग एक दूसरे से जुदा कर दिए गए, तो जुदा होते वक्त अजीज व अकारिब एक दूसरे से गले लगते और रोते थे, तो लोगों ने देखा कि अबू जर अलैदा अकेले बैठे रो रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि आज आप क्यों रो रहे हैं, हालांकि अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम और मुसलमानों को इज्जत और फतह से नवाजा है, आपने जवाब दिया, क्या तुम इबरत नहीं पकड़ते कि अल्लाह ताला के सामने आजिज मखलूक की कोई हैसियत नहीं? देखो, ये लोग अपने मुल्क के मालिक थे और अपने दुश्मन पर गालिब, मगर जब इन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की तो अल्लाह ने दूसरों को इन पे मुसल्लत कर दिया और जलील हो गए। यानी जब इंसान गुनाह करता है ना, तो अल्लाह ताला दूसरी कौमों को उसके ऊपर मुसल्लत कर देता है, ये गुनाहों की सजा होती है। इसी तरह गुनाहों की सजा में ये भी होता है कि इंसान गुनाह की वजह से ऐसे रिस्क से महरूम हो जाता है जो उसको मिलने वाला था। हमें ये नहीं पता ना, हम सोचते हैं कि बस आखिरत में तो कोई सजा होगी, लिहाजा कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम यहाँ पे गुनाह करते भी जाएं, और आखिरत की सजाएं तो अभी दूर हैं। और हमें ये नहीं बाज दफा पता होता कि दुनिया में कई चीजें, कई मुसीबतें हमारे ऊपर हमारे गुनाहों की वजह से आ रही हैं। उलमा लिखते हैं कि जो रब एक चोर को चोरी करने पे हाथ काटने की सजा दे सकता है, वो आखरत में भी बड़ी बड़ी सजाएं दे सकता है। इसलिए ये कहना कि कुछ नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी कर रहे हैं, इससे धोखा ना खाइए। जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दुनिया की सजाएं मैं आपको बता रही हूं, कि जब किसी बस्ती में जिनाकारी और सूदखोरी आम हो जाए तो अल्लाह ताला उसकी हलाकत का हुक्म दे देता है। इसी तरह ये भी रिवायत हमें पता चलती है कि जब लोग अपने इल्म का इजहार करने लगे और अमल को जाया कर दें, अमल नहीं करते बस इल्म की शेखियां मारते हैं, जुबान से हमदर्दी और दिल में बुग्ज रखते हैं, लोगों के सामने तो बड़े अच्छे हो जाना, मीठे हो जाना, और दिल भरे हुए बुग्ज से और कतई रहमी करने लगे, तब अल्लाह ताला उन पर लानत का नुजूल करेगा और उन्हें अंधा बहरा कर देगा। लानत यानी अल्लाह की रहमत से दूरी। इसी तरह ये हमें पता चलता है कि जब फोहश काम होने लगे किसी जगह पर और खुलम खुला होने लगते, तो अल्लाह ताला उनको ताऊन और ऐसी बीमारियों में मुब्तला कर देता है जो इनसे पहले कभी नहीं हुई थी। और आप देखते हैं अब ऐसी ऐसी बीमारियों के हम नाम सुनते हैं जो कभी भी हमारे बाप दादा ने तो सुनी भी नहीं थी। इसी तरह जब कोई कौम नापतोल में कमी करती तो अल्लाह ताला उनको कहर और जुल्म और हाकिम की मुसीबतों में मुब्तला कर देता है। फिर ऐसे हाकिम भी मुसल्लत हो जाते हैं जो उनके ऊपर जुल्म करते। इसी तरह जब कोई कौम अपने माल की जकात अदा नहीं करती तो अल्लाह ताला बारिश से महरूम कर देता है, और अगर दूसरे हैवानात जमीन पे ना हो तो कभी भी बारिश ना होती। इसी तरह जब कोई कौम अहद चिकनी करती तो अल्लाह ताला उनके दुश्मनों को उन पर मुसल्लत कर देता है, वो इनके हाथ से सब कुछ छीन लेते, और जब इस कौम के आइम्मा किताबुल्लाह के मुताबिक अमल नहीं करते तो अल्लाह ताला उन पर दुश्मनों का खौफ गालिब कर देता है। तो ये सारी सजाएं दुनिया की ही तो हैं, आखरत की सजाएं तो बहुत बड़ी, वो तो इससे भी बड़ी है, मगर ये दुनिया की सजाएं। इसी तरह हजरत उमर के जमाने में एक दफा जलजला आया तो आपने फरमाया, इस जलजले का सबब कोई ऐसा नया गुनाह है जिसको तुम लोगों ने किया है, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर दोबारा जलजला आया मैं तुम्हारे अंदर कभी रहना पसंद ही नहीं करूंगा, मैं तुम लोगों में से निकल जाऊंगा अगर दोबारा जलजला आया। क्योंकि उनको ये होता था कि ये ऐसे ही नहीं मुसीबत आ रही, हमारे ऊपर मुसीबतें आती रहती, मगर हमें एक पल को भी नहीं ये सोचते कि ये मुसीबत कहीं हमारे किसी गुनाह की वजह से तो नहीं है। असल में मसला ये है कि हम लोग इस बात से गलती खा जाते हैं कि गुनाह की फौरन कोई सजा जो नहीं महसूस होती, इसलिए हमें लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं, अगर मैंने ये काम किया है गुनाह का कुछ भी नहीं हुआ, तो इसलिए इंसान रिलैक्स हो जाता है और जमाना गुजरता रहता है और वो देखता है कि कुछ भी नहीं हुआ, तो फिर वो उस गुनाह को भूल ही जाता है और उसको गुनाह समझता ही नहीं, अब उसकी रूटीन बन जाता है, तो उसको ये लगता है आइंदा भी मैं करता भी रहूंगा तो गुनाह से कुछ भी नहीं होगा। याह याह्या बिन माज अर राजी फरमाते हैं कि कि मुझे उस साहिबे अकल और होश पे ताज्जुब है जो अपनी दुआ में तो कहता है, ए अल्लाह मेरे दुश्मनों को मुझ पे ना हंसा, इसके बावजूद वो खुद दुश्मनों को अपने ऊपर हंसाता है। लोगों ने पूछा वो कैसे, आपने फरमाया अल्लाह की नाफरमानी करने की वजह से, क्योंकि इसकी वजह से दुश्मन उसके ऊपर कयामत के दिन हंसेंगे। तो ये रुसवाई कितनी बड़ी होगी। गुनाहों के इतने नुकसान आते हैं, इसके ऊपर उलमा ने बाकायदा किताबें लिखी हुई हैं बड़ी बड़ी जिल्दों में, लेकिन हम चूंकि ये इल्म ही नहीं रखते इसलिए हमें पता ही नहीं है कि ये कोई नुकसान भी देता है। इमाम शाफी इमाम मालिक की खिदमत पे हाजिर हुए और सबक पढ़ा तो इमाम मालिक अपने शागिर्द की जहानत देख के बड़े खुश हुए और फरमाने लगे, मैं देखता हूँ कि अल्लाह ताला ने तेरे कल्ब में नूर को इल्का किया हुआ है, लिहाजा एहतियात रखना कहीं गुनाह की जुल्मत से ये बुझ ना जाए। इसका मतलब क्या कि इल्म जो है ना वो भी उस दिल में आता है जो गुनाहों से पाक होता है। गुनाह इल्म के नूर को बुझा देते हैं, गुनाहों की स्याही होती है जो इस नूर को खत्म कर देती। इमाम शाफी फरमाते हैं कि मैंने अपने शेख इमाम वकी से हाफजे की कमजोरी की शिकायत की, जो कि हम सब करते हैं कि हमारा हाफजा बहुत कमजोर है, तो उन्होंने मुझे गुनाहों को छोड़ने के बारे में इरशाद फरमाया, फरमाया यकीन जानो इल्म अल्लाह ताला का फजल और एहसान है और गुनाहगार इस फजल के अहल नहीं है। अल्लाह अकबर। इसी तरह गुनाह गार जो इंसान होता है ना उसके दिल में एक वहशत रहती है, उसको सुकून कहीं नहीं आता। देखिए हम सोचते हैं ना सुकून इसके अंदर है कि हमें माल दौलत ये सब चीजें मिल जाए, अगर सुकून इसमें होता तो मालदार लोग ये मिलियनियर्स जो बिलियनियर्स हैं वो खुदकुशियां ना करते। अगर इसमें सुकून होता मौसीकी में तो मौसीकी करने वाले जो लोग हैं वो तो सबसे ज्यादा पुरसकून होते, लेकिन वो ड्रग्स में होते। क्यों वो सुकून हासिल करने के लिए इस नशे का सहारा लेते हैं, सुकून उनको भी नहीं। तो मालदारों को भी देखे वो रात को गोलियां खा के सोते हैं नींद की, उनको नींद ही नहीं आती। इसी तरह कई तरह की बीमारियां उनको लगी होती हैं, कहते हैं स्ट्रेस बहुत है, एंजाइटी बहुत है, डिप्रेशन की बीमारियां अमीरों की ही बीमारियां। तो अगर माल होने से इंसान के दिल को सुकून मिल सकता होता तो इनको मिलता। तो दिल की जो वहशत है ना वो इस वजह से होती है कि इंसान के जब गुनाह बहुत हो जाते हैं उसी तरह उसके दुनिया के काम भी उसके लिए मुश्किल हो जाते हैं। एक मुत्तकी इंसान के लिए अल्लाह ताला दुनिया में भी आसानियां करता है, और जो गुनाह है इसके बारे में उलमा ये भी कहते हैं कि गुनाह उम्र को कम कर देते हैं। कम कर देने का मतलब क्या है कि इससे उम्र में से बरकत निकल जाती है, बरकत चली जाती है। अल्लाह अकबर। और इसी वजह से इंसान कयामत के दिन हसरत करेगा क्योंकि उसकी जिंदगी जाया हो गई होगी ना, बरकत ही उठ गई। बरकत बरकत क्या होती है, छोटी सी जिंदगी में इंसान बड़े बड़े काम कर जाता है, वो काम जो उसकी आखिरत में काम आने वाले हैं, तो बरकत ही नहीं रही, सारा वक्त जाया हो गया। इसीलिए कयामत के दिन वो इंसान पछताएगा, कहेगा या लैतनी कद्दम तुली हयाती, हाय काश मैंने अपनी जिंदगी के लिए कोई नेक अमल किए होते, उसने तो अपनी जिंदगी सारी जाया कर दी क्योंकि गुनाहों में पड़ा हुआ था, उसकी नहुसत की वजह से जिंदगी जाया होगा। जैसे होता है ना कि इंसान बीमार पड़ जाए तो क्या होता है, अच्छी अच्छी गजाएं भी उसको मना हो जाती हैं। अब इसी तरह इंसान गुनाहों में पड़ता है ना तो उसकी जिंदगी के जो दिन है वो भी जाया हो जाते हैं, उनमें भी कोई नेकी खास नहीं कर पाता। और फिर एक गुनाह एक नहीं रहता, वो दूसरे गुनाह का बीज बोता है और बाज गुनाह बाज का बाइस बनते हैं। इंसान जैसे नेकी करता है एक, तो उसके लिए दूसरी नेकी का दरवाजा खुल जाता है। इसी तरह गुनाह ऐसा अजाब है कि वो दूसरे गुनाह का सबब बनता है, ये एक नहीं ना रहता, वो बढ़ता जाता है और आहिस्ता आहिस्ता इंसान गुनाह को इतना हल्का महसूस करने लगता है और गुनाह के अंदर इतना गर्क हो जाता है कि गुनाह उसकी आदत बन जाते हैं, फिर उसको बुरा नहीं लगता कोई गुनाह करते हुए। फिर वो कहता है आप पागल हैं जो आप मुझे कह रहे हैं कि ये गुनाह है, ये कि कैसे गुनाह हो गया, ये तो कुछ भी नहीं है, इससे क्या फर्क पड़ता है। बल्कि बाज दफा इंसान उस पर फख्र करता है कि जी मैंने ये काम किया और वो काम किया, हालांकि वो गुनाह का काम है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तमाम लोग उन लोगों की माफी हो जाएगी मगर वो जो खुल्लम खुल्ला एलानिया तौर पे गुनाह करते हैं, और उसमें क्या है कि वो कोई गुनाह करता है इंसान, अल्लाह ताला उसके गुनाह पर पर्दा डाल देता है, लेकिन वो सुबह को, रात को वो गुनाह किया, अल्लाह ने पर्दा डाला, अल्लाह ताला ने किसी के ऊपर वो राज उसका फाश नहीं किया, लेकिन वो खुद सुबह को क्या करता है, लोगों से जाकर कहता है मैंने रात को ये किया, अल्लाह ताला ने उसकी पर्दापोशी की, लेकिन वो लोगों को बताता फिरता है। तो गुनाहों का इश्तिहार लगाना भी सही नहीं है, ये भी इंसान के लिए तौबा का दरवाजा बंद कर देता है, माफी का दरवाजा बंद कर देता है। कभी भी अपने गुनाहों को बयान ना करें लोगों को, मैं जी ये करती थी, मैंने ऐसा किया था, उसके ऊपर खुश हो के फखर कर करके ना बताएं। हम तो फेसबुक पे ही लगा देते हैं अपने, और जो भी हमारे सोशल मीडिया है उसके ऊपर लगा देते हैं कि जी मैं यहाँ पे गई थी, मैंने ये काम किया था। यानी यार आपने किया भी तो उसके ऊपर शर्मिंदा होने की बजाय उसको वहां पे इश्तिहार दे दिया, उससे क्या होगा, आपका गुनाह जो अल्लाह ताला ने छुपाया हुआ था वो आपने एक्सपोज किया। और ये हदीस कहती है कि लोगों की माफी हो जाती मगर वो जो खुल्लम खुल्ला, यानी उनको कोई शर्म ही नहीं है, उनकी हया ही खत्म हो गई, गुनाह करते करते इंसान की हया खत्म हो जाती है। और इसी लिए आप देखते हैं ना कि आराम से गुनाह करते जाते हैं और फर्क ही नहीं पड़ता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन जो होता है वो अपने गुनाह को ऐसे समझता है जैसे वो पहाड़ के नीचे बैठा, उसको डर लगता है कहीं पहाड़ उसके ऊपर आ ना गिरे, और जो फासिक फाजिर होता है वो अपने गुनाह को ऐसे समझता है जैसे एक मक्खी है जो उसके नाक पे बैठी है, उसको उठा उठा के उड़ा देगा। तो इसलिए गुनाहों को बड़ा समझें, चाहे छोटा भी गुनाह है उसको भी बड़ा समझे। एक तो हमें कबीरा गुनाहों का वैसे ही नहीं पता होता, हर चीज को हम सोचते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है, तो छोटी बात ही है। आप देखिए सूरह तौबा में तीन सहाबा कराम जो पक्के मोमिन ईमान वाले थे, उनकी तौबा 50 दिन के बाद कबूल हुई थी, 50 दिन तक उनका बायकॉट हुआ रहा था और फिर उनकी तौबा कबूल हुई थी। और एक बात सिर्फ इतनी थी कि उनका इरादा था कि वो जिहाद पे निकलें, लेकिन बस टालते टालते वो दिन आ गया कि बहुत टू लेट हो गया। और ऐसा नहीं था कि वो कहते थे कि हमने नहीं जाना, लेकिन देखें उनकी तौबा में कितना डिले आया, कितने दिन तक वो तौबा करते रहे, कितना तड़पे वो, और बिल्कुल उनका बायकॉट हो गया हुआ था, उनके लिए जिंदगी मुश्किल हो गई थी, ऐसे लगता था जमीन उनके लिए तंग हो गई, हालांकि वो सहाबा कराम थे, उनके मर्तबे और मकाम को तो हम में से कोई पहुंच नहीं सकता, लेकिन देखें उनके साथ क्या हुआ। तो कभी गुनाह को ऐसे ना समझे कि कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बस एक तौबा इस्तगफार करूंगी तो बस ये गुनाह नहीं मिट ही जाना है मेरे ऊपर से। तौबा को भी हमने एक मजाक समझ लिया है, और तौबा को भी हम ऐसे सोचते हैं कि ये तो कुछ बात ही नहीं, मेरे तो दाएं हाथ का खेल है, बस मैंने इधर तौबा की और उधर, असल में हमने तौबा का मफहूम नहीं ना समझा। तौबा तो है ही शर्मिंदगी, तौबा तो है ही रोना इस बात के ऊपर कि अल्लाह मेरे से ये क्यों हो गया, मैंने कैसे ये कर दिया, ऐसी नहीं दामत तो कोई है ही नहीं, बस तस्बीहों पे तस्बीह और उसको दुआएं याद कर ली, इस्तगफार की और उनको कर लिया, और सोचा कि बस हम तो सारे पाक साफ हो गए। ये जो हम गुनाह करते हैं ना, इनकी गुनाह की शामत जो है दूसरे लोगों पे भी पड़ती है, और हत्ता के जानवरों तक पे पड़ती है। मुजाहिद फरमाते हैं जब कहत पड़ जाता है और अल्लाह ताला की रहमत की बारिश नाजिल नहीं होती, तो ये जो जानवर हैं ये नाफरमान लोगों पे लानत भेजते हैं और कहते हैं ये मुसीबत इब्ने आदम की नाफरमानियों की नहुसत की वजह से हम पर नाजिल हुई है, यानी बारिशें बंद हो गई। इकरमा फरमाते हैं जमीन के चौपाए, हशरात और जानवर जो हैं वो भी यूं कहते हैं औलादे आदम के गुनाहों की वजह से हम पर बारिश बंद हो गई। अब सोचें कि इससे बड़ा क्या अजाब होगा कि बेगुनाह चीजें भी वो भी लानत भेजती हैं किसी गुनाहगार के ऊपर। तो हम ये समझें इस बात को, इसको बात को बड़ा समझें, क्योंकि बाज गुनाह ऐसे हैं जिनकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी, और उन गुनाहों को तो हम कुछ समझते ही नहीं। मिसाल के तौर पे जैसे कि ये आईब्रोज बनवाना, अब वो अपने चेहरे के बाल उखाड़ने वाली पे लानत, को जो उखाड़ रही है उस पर भी, जो करवा रही है उस पर भी, मसनूई बाल जो विग्स लगाते हैं वो उनके ऊपर लानत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजी, फिर हलाला करने वाले पे, कराने वाले पे, फिर सूद लेने वाले, देने वाले, लिखने वाले, शराब पीने वाले, पिलाने वाले, निचोड़ने वाले, इस तरह वो औरतें जो मर्दों की तरह के लिबास पहनती हैं उनकी तरह बनती हैं, वो जो अपने वालदैन को गाली देता है, जो किसी मुसलमान को नुकसान पहुंचाता है और उसको धोखा देता है, वो जो कब्रों पे मस्जिदें बनाते हैं और चिराग जलाते हैं, ये कितनी कॉमन चीज है। और इसी तरह वो आदमी जो अपनी बीवी के साथ उसकी पीठ के रास्ते इंटरकोर्स करता है, इसी तरह वो औरत जो मर्द की ख्वाहिश पर उससे हम बिस्तरी नहीं करती और अलहदा रात गुजारती है, ऐसी औरत पे भी सारी रात फरिश्ते लानत भेजते रहते हैं। और इसी तरह वो इंसान जो अपने मुसलमान भाई को किसी हथियार से इशारा भी करता है, फरिश्ते उसके ऊपर लानत भेजते हैं। आप देखिए ना, इन गुनाहों को तो हमने कभी कुछ समझा ही नहीं। इसी तरह कतई रहमी करने वाला, जिन्होंने तोड़ा हुआ है अपने किसी रिश्तेदार के साथ, उनके साथ बातचीत ही बंद है, या उनको अजियत पहुंचाने वाले, या जो हमसाए को अजियत पहुंचाता है, वो उसके बारे में फरमाया कि वो तो जन्नत में दाखिल ही नहीं होगा अगर उसका हमसाया जिसका उसके शर से महफूज नहीं है। इस तरह जो पाक दामन औरतें, उनके ऊपर तोहमतें लगाना, हम तो किसी को भी कह देते हैं ये तो ऐसी और ऐसी है, इस बदकार है जो ये है, उसका इसके साथ अफेयर, ये उसके साथ ऐसे, कितने आराम से बोल देते हैं। और ये चीज इतनी आज कॉमन हो गई कि वो जो खुद को मुखन्नस बनाते हैं, यानी जो ट्रांसजेंडर खुद को बना लेते हैं, अब रिश्वत देने वाला लेने वाला। इसी तरह और भी कई ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर लानत भेजी गई है। अब इन चीजों को हमने कभी गुनाह नहीं समझा, और ये चूंकि हमारे माशरे में आम हो चुकी हैं, इसलिए हम समझते हैं कि इस ये इट्स ओके टू डू दिस, क्योंकि ये आम जो है सभी जो करते हैं। सबके करने से कोई भी चीज हलाल नहीं हो जाती, हमें जानना चाहिए कि क्या चीज हराम है। तो इंसान इस चीज को समझे, और बाज गुना ऐसे हैं कि उसकी वजह से फरिश्तों की दुआ से इंसान महरूम हो जाता है। तो इसलिए गुनाहों से बचिए। ये तो मुख्तसर वक्त में मैं आपको थोड़े से गुनाहों के बारे में बता सकी हूँ, और इनके थोड़े से नुकसान बताए हैं, वरना चूंकि बहुत वास्ट टॉपिक है ये, तो ये समझ लीजिए कि ये जहर है, गुनाह जो है वो जहर है, ये इंसान से नेमतों को छीन लेने वाला है, नेमतें खत्म हो जाती हैं। बाज गुनाहों की वजह से हलाल चीजें इंसान पे हराम हो जाती हैं। तो इसलिए गुनाहों को छोड़ने में ही हमारे लिए आफियत है, और हम अल्लाह ताला से दुआएं भी करते रहें, खास तौर पे सजदे में जाके दुआएं करें, क्योंकि इंसान अल्लाह ताला से बहुत करीब होता है। और सजदे के दरमियान की आज एक दुआ आपको बताती हूँ, आप इस दुआ को जरूर सीख लें, इस दुआ को जरूर मांगें, और ठहर ठहर के इस दुआ को मांगें, खास तौर पे आखिरी पहर जो रात का है उस वक्त इस दुआ को इतनी ठहर ठहर के मांगे, इसलिए क्योंकि इसमें दुनिया जहान की खैर आपके दामन में आ जाएगी अगर आपने इस दुआ को मांगा और ये कबूल हो गई। तो क्या दुआ है? अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली, अल्लाह मुझे बख्श दे, वरहमनी और मुझे माफ़ कर दे, वहदीनी और मुझे हिदायत दे दे, वजबुरनी और मुझे मेरे मामलात को फिक्स कर दे, अल्लाह ताला फिक्स कर दे, वआफ़ीनी और मुझे आफ़ियत दे, वरजुकनी मुझे रिस्क दे, वरफ़ानी और मुझे बुलंदी अता फरमा। बहुत प्यारी दुआ है। तो एक एक चीज को ना इसमें सोच के, जब अग़फ़िरली कहें और हमनी कहें, अदीनी कहें, वजबुरनी कहें, तो एक एक चीज को सोचें अपने जहन के अंदर कि अल्लाह ताला मुझे वाकई माफी की जरूरत है, अल्लाह ताला मुझे तेरी रहमत की जरूरत है, अल्लाह मुझे हिदायत दे दे, मेरे सारे मामलात को सही कर दे, इस्लाह उनकी कर दे, फिक्स कर दे उनको। तो ये बहुत अच्छी दुआ है इस लिहाज से कि आप ये दुआ मांग के और कितना खैर अपने लिए आप जमा कर सकते हैं। इसी तरह आप जब खाना खाएं, तो उसमें खाना खाने के बाद, जैसे इफ्तार आपने की या सहरी आपने की, तो उसके बाद दुआ कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत'अमनी हादा, अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे ये ताम दिया, ये खाना दिया। और एक रिवायत में अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत'अमनी हादा ताम भी है, वरज़क़नी ही मिन गैर हौलिन मिन्नी वला कुव्वतिन, और मुझे ये रिस्क दिया बगैर मेरी किसी मेहनत और ताकत और कुव्वत के। आपने ये अगर दुआ पढ़ ली तो अल्लाह ताला आपके पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनसे गुनाहों की बख्शिश हो जाती है, लेकिन आप ये ज़रूर याद रखिएगा कि गुनाहों की बख्शिश बगैर निदामत के नहीं होती। आप ये जो भी आपको दुआएं बताई जाएं, इनको मांगते वक्त वाकई अपने गुनाहों का भी सोचें कि मेरे गुनाह कितने ज्यादा हैं, और अल्लाह ताला मुझे तेरी तरफ से माफी की जरूरत है। अब मैं आपको वो जो जिक्र बताया था उसी के फजाइल में एक और बात बताना चाहती हूँ, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, के ये मीजान में इतने भारी हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह को तो एक तरफ रख दें और दूसरे पलड़े के अंदर अगर जमीन व आसमान और जो कुछ इनमें है सब रख दिया जाए तो ला इलाहा इल्लल्लाह ज्यादा वजनी है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह से सारा मीजान भर जाता है। तो ये बहुत बहुत भारी वजनी कलिमात है, इनको आपने छोड़ना नहीं है। इसी तरह हमने अपनी जन्नत की प्रॉपर्टी के बारे में बात की थी, तो याद रखिए कि जन्नत की प्रॉपर्टी के लिए भी हमें ये सरमाया चाहिए, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर का, इसलिए क्योंकि ये समझ लें कि वहां आपका गार्डन बनाएगा, आपका बाग बनाएगा। क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई थी मेराज पे, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम सोचें खलीलुल्लाह और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हबीबुल्लाह, तो कितनी कितनी VVVVIPs दो मिले। तो उस वक्त की जो गुफ्तगू हुई उसमें एक बात जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए पैगाम दिया था, यानी मुझे और आप, हम सब अभी दुनिया में आए भी नहीं थे, जबकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हमारे लिए एक पैगाम भेजा, और वो पैगाम क्या था कि जन्नत बहुत हसीन है, उसकी जो मट्टी है वो बड़ी जरखेज है, उसका पानी पाक है, और इसमें जो दरख्त लगाना चाहते हैं तो वो सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़ा करें, तो हर कलमे से एक दरख्त लग जाएगा। तो कितने दरख्त आप अपने लिए अपनी जन्नत में चाहते हैं उतना ही ज्यादा आप ये कलमा पढ़ें, इसमें ज्यादा मेहनत नहीं। और फिर सबसे बड़ी बात यह कि आपको कुछ याद ही नहीं करने की जरूरत। जो लोग रोजा रख सकते हैं वो भी पढ़ें, जो नहीं रख सकते वो भी पढ़ें, जो बेड रिडन है बीमार है वो भी पढ़ें, जो नापाकी की हालत में है हैज की हालत में है वो भी पढ़ सकते हैं। तो सब लोग पढ़ सकते हैं ये कलिमात, किसी को भी ममानियत नहीं है। क्यों ना हम अपने मीजान भरते जाएं नेकियों के मीजान को, और क्यों ना हम अपने बाग को दरख्तों से आबाद कर लें ये कलिमात पढ़ के। इसी तरह मैंने आपको दोहा की नमाज का बताया था कि दोहा की नमाज आप पढ़ सकते हैं जब सूरज बुलंद हो जाए, तो जब भी आप लोग को टाइम मिले, यानी मिसाल के तौर पे आप सो गए हैं और उसके बाद आप 9 बजे या 10 बजे उठे हैं, तो आप उठ के सबसे पहले वुजू करके ये दुहा के अगर 4 रकत पढ़ लेंगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीसे कुदसी है कि अल्लाह ताला फरमाता है, ए इब्ने आदम दिन के शुरू में 4 रकत पढ़ ले तो मैं तेरे लिए काफी हूँ सारे दिन के लिए। यानी आपने सिर्फ 4 रकतें पढ़ ली ना तो अल्लाह ताला काफी है आपके लिए सारे दिन के लिए, यानी किस चीज से काफी है, हर किस्म के स्ट्रेस परेशानी हर शर से बचने के लिए अल्लाह काफी है आपके लिए। तो ये दिन के स्टार्ट में होना चाहिए ताकि अल्लाह ताला तमाम किस्म के शर से महफूज रखे। अल्लाह ताला हमारी दुआओं को और हमारी इबादत को कबूल फरमाए और हमें गुनाहों से महफूज रखे। अल्लाह ताला बचने की तौफीक अता फरमाए। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।